पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए क्या बताया है गीता ज्ञानदाता, तो कहता है तत्वदर्शी संतों की खोज करो। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के उस परम पद के पाने की ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस तीन मंत्र के जाप से वो परम पद प्राप्त होगा। ये पद्धति है, पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की पद्धति। अब यहां देखो ये है सूक्ष्म वेद, ये इस वेद से भी गुण रहस्य रखता है जो आप वेद आप पढ़ते और सुनते आए हो। इसमें क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, वो ऐसा ज्ञान देगा कि यहां से अपने आप मन हट जाएगा और सच्चाई है सारी है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। पद मिलने से, पद माने पद्धति या तीन मंत्र का जाप, ये पद्धति है। जैसे पद्धति में ये सारा प्रोसेस आ जाता है। प्रथम मंत्र ये सात नाम का सब चैनलों को ऑन करेगा, खोल लेगा, आपका रास्ता साफ करेगा त्रिकुटी तक जाने के लिए। और फिर ये दो मंत्र का सतनाम और तीसरा इसके साथ मिलेगा वो सार नाम, सार शब्द, सार नाम आदि नाम जिसको कहते हैं। इन पूरे प्रोसेस से यह पद्धति है, ये सब मिलाकर पद्धति है। इसको पद कहा संतों ने कि पद मिल पदे समाना। यानी ये पद्धति जब मिल जाएगी पूरी प्रोसेस भक्ति का एक्यूरेट, तब उस पद में समाओगा जहां जाने के बाद उस परम पद की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वत स्थान है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर क्या बताया है, वहां क्या सुख है। चार मुक्ति जहां चंपी करती, जो यहां तुम चार मुक्तियां मानते हो इस नकली लोक में और ये तो अस्थाई है, किसी की नहीं रह सकती, वहां जाने के बाद भी चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु के अंदर आता है और वहां ये सुख तुझे सदा बना रहेगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती, यानी तेरे नौकरानी बनकर खड़ी रहेंगी, तेरी सेवा महादरीय सुविधाएं पड़ी रहेंगी तेरे चरणों में वहां सदा। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी और गरीबदास जी कह रहे हैं दास गरीब अभ्यपद परसह, वहां कोई चिंता कोई टेंशन कोई भय नहीं मृत्यु किसी प्रकार का भी। और वो मिले राम अविनाशी, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो है अविनाशी भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। और इस साधना से मिलेगा जो दास बताओगा ना कहीं नहीं मिलेगा आपको। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ गौर नहीं रे साधाओ, फिर यह अवसर नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनार कबीर देव जी कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं और हम सभी प्राणी जितने भी काल के इस लोक में हम फंसे हुए हैं ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है स्वामी है। पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपका मनुष्य जीवन ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने इस यथार्थ ज्ञान के प्रचार का आदेश दे दिया और ये मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष समय है, ये वो समय है जिसको हम मोक्ष समय कह सकते हैं। ये कलयुग की बीचली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी प्रथम चरण जब परमात्मा कबीर देव जी कबीर साहेब जी काशी में दुलाहे की भूमिका करने आए थे वो प्रथम चरण था। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब बीचली पीढ़ी का समय आएगा तब तक इस मूल ज्ञान को और मूल मंत्र को यानी सतनाम और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है, गुप्त रखना है। इसका कारण आपको पहले भी बताया, इसका कारण ये था कि काल भगवान परमात्मा के ही बच्चों को उस परमेश्वर के ही बच्चों को मिसगाइड करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, उनको संत पद देकर, क्योंकि वो पिछले जन्म के पुनकर्मी प्राणी होते हैं जो गुरु पद प्राप्त करते हैं और ये उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई को नाश करवाता है गुरु पद पर बैठा के, और दोषी अपराधी बनवाता है परमात्मा के उन भोली आत्माओं को रास्ता गलत बतवा के। अपने आत्मा कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो राहगीर यानी रास्ते में और वो किसी व्यक्ति से पूछे अपना गंतव्य स्थान और जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहां सबक क्षेत्र का जानकार हूं और वो दिशा गलत बताता है और वो व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है यात्री कि ये कहता मैं यहां का पूरा जानकार हूं तो वो दिशा गलत जाकर के अपने यथास्थान के विपरीत चला जाता है तो फिर वो कितना दुखी होता है, उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति मानेगा या बुरा ये तो अंडरस्टूड है। आज यही दशा इन नकली गुरु और पंथों मंडलेश्वरों आचार्यों और शंकराचार्यों इन परम धनियों की है। हमारे सदग्रंथ कुछ बोलते हैं ये हमें कुछ बताते हैं तो पुण्यात्माओं काल के द्वारा ये अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया जाता है उसको सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर। तो वो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले काशी शहर में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहकर इस अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया करते थे, सुनाया करते थे। लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, जिस कारण से हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते थे और वो चारों वेदों को कंठस्थ याद भी रखते थे, जिस कारण से उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। जिसने तीन वेदों को कंठस्थ याद कर लिया वो त्रिवेदी कहलाता था। जो दो वेदों को कंठस्थ याद करते थे, रखते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। और उनको उन वेदों का कख नहीं पता, ना पुराणों का ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को। तो उस समय परमात्मा ने अपना परिचय दिया था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो क्या किया करता है। जो वेदों में वर्णित परमात्मा के गुण हैं, उनके अनुसार परमात्मा कबीर जी ही खरे उतरते हैं जो वेद बताते। अपने आत्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आपका ये निज स्थान नहीं है और यहाँ आप काल के जाल में फंसे हुए हो और आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो। लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए क्योंकि वह स्वयं आए हुए थे और हम सदग्रंथों से अपरिचित थे, इसलिए हम मार खा गए, हम धोखा खा गए, हम परमात्मा को छोड़कर इन काल के दूतों के बहकावे में आकर हम परमात्मा से दूर हो गए। लेकिन उन्होंने रहम किया, हमारे को उसमें भक्ति युक्त कर गए, हमें कुछ चार्ज कर गए, जिस कारण से हमें मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और जो पुण्यात्मा परमात्मा के संग में कभी किसी युग में रहे हैं तो वो पुण्यात्मा ही आज परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो परमात्मा की खोज में और काल के ग्रुप में जाकर सेट हो गए। वो काल के ग्रुप कौन कौन से हैं? पुण्यात्मा काल ने परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी तब कहा था कि भगवान तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तब गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा लिया, चरण पकड़ दिए और कहा क्या उद्देश्य लेकर आए हो, तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है, कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है। मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो और सतलोक में जाने की जो विधि जो मंत्र है वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा, फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी, पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सीमन कर दिया, सतनाम के श्वास उस श्वास का सीमन कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं, आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सीमन तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उस समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ लिए, तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो, परमात्मा ने सब बताया, जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं वो मेरी पूरी कर देना। परमात्मा ने कहा बोलो। इसने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने कहा था कि तीन युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे, उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूं मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहां, क्योंकि इनकी आस्था यहीं जमा हो रही है, पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप इनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। अपने आत्मा तब काल ने जो पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, इन द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं, इन मैं उड़ जा दूंगा, और जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने, हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के दो तेरे बच्चे, उनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा अपने दूत भेज कर 12 नकली पंथ, और उसके बाद और पंथ अनेक चलाऊंगा, इसमें जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, तू अपने सारे काम कर लिए, जितने दाव तू लगावेगा। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेज दूंगा। पहले तो परमात्मा ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा, उनकी मौत है वो आप आवे या अपना प्रतिनिधि भेज दें, एक का बात होती है। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ चलवा दिए, और किसी के पास नाम नहीं, किसी के पास वो परमात्मा वाला विधान और ज्ञान नहीं। अब जैसे ये 12 पंथों के विषय में तो आपको बहुत बार दिखाया है, एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर जो अपने आप को पारखी बोलते हैं, जो अपने आप को पारखी संत कहते हैं, और वो कबीर परमेश्वर जी को अपने पंथ का यानी कि इस पारख पंथ का प्रमुख मानते हैं, और वो केवल परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी जिसको एक बीजक ग्रंथ कहते हैं, कबीर बीजक, उस वाणी को ये पारखी संत सत्य मानते हैं और कहते हैं कबीर साहब ने जो वाणी बोली है ये सारी सच्ची है जो बीजक में लिखी है। अब ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुंच रहा है चैनलों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, और ये भी प्रमाणित हो रहा है क्योंकि बुद्धिमान समाज है, आज कोई बालक नहीं। अभी तक इन पुण्यात्माओं को ये पता ही नहीं लगा था कि जिनको हम संत मान रहे हैं ये संत नहीं असंत हैं, ये तो आपसे भी नीचे स्तर के ज्ञान के व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने वो भक्ति भी छुटवा दी जिससे थोड़ा बहुत लाभ मिलना था। जैसे घर घर में जोत जगाई जाती थी, जो हवन यज्ञ का काम करती थी, इन राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ वाला ने, जय गुरुदेव पंथ वाला ने, वो भी बंद करवा दी। और क्या कहते हैं, हम तो अंदर ज्योति देखेंगे, अंदर देखेंगे, अंदर की ज्योत जलाएंगे, ये खाक ज्योत जलाएंगे, पांचों नाम काल के जाप करें, और गुमराह किए बैठे सतलोक जान की बात करें, है तेरा गजब। अपुणात्मा इस काल ने एक नहीं कई सिकंजे कस रखे हैं, कई फांस बांध रखी है प्राणी के। अब इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है, सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है, फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जन साधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भाई सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है, हम सबसे पुराने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में, और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से, तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी। अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया, बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है, तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया। उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान है, और इस दास के बारे में सोचा ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं, और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत यथार्थ ज्ञान मिलेगा जो उसने धारणा बना रखी थी, परिचित नहीं होने दिया, और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवे, बांधोगढ़ का वो स्थान देखें जहां धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देखाते हैं, संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे सन 1998, फिर 99 की बात है, सन 2000 में फिर हम कहां गए? कबीर भट्ट है एक, ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था और उसमें जीवा दत्ता नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने ज्ञान सुना कि अभी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि अभी हम जिस भी संत के विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है, अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है? तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं यानी नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के और इस टहनी में डालेंगे, और यदि ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहां भी जिस संत का नाम सुना वहीं पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की, दासों को चरणामृत दीजिए। अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि ले बेटा ले लो, उनके चरण धोएं और डाल के पात्र में घर ले आवे, आते उसमें डालते हैं। दो दिन बाट देखें, दो तीन दिन कुछ नहीं होता, हफ्ते दस दिन, फिर दूसरे के पास जाए, तीसरे के पास जाए, सब जगह जा लिए जिनका बोलबाला था। ये उनको ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान मिले नहीं तो व्यर्थ है, और पूरे गुरु बिना भगवान नहीं मिले। सब संत कहते हैं, ऋषि और मंडलेश्वर कहते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन कर लिया कि हे परमात्मा, इस समय तो पृथ्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है, हम दोनों भाइयों की मृत्यु कर दो और किसी समय इस पृथ्वी पर संत आया हो पूर्ण, उसमें हमारी शेष आयु मनुष्य की दे देना दाता। कति फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के और ये अर्ज की, और दोनों भाई मायूस रहने लग गए कि क्या बने इस जीवन का, है तो पूंजी नष्ट हो रही है। अब कहते हैं परमात्मा, दाहरी मेरे संत की मुझसे मिटैनी अन्न से। उसी समय हफ्ते दस दिन के बाद परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में, जिसमें 30-40 घर थे ज्यादा से ज्यादा, पहले ऐसे छोटे छोटे गांव होते थे सभी, तो वहां गली में घूम रहे हैं और जीवा और दत्ता, जिसको तत्वा भी कहते हैं, उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे, तो दत्ता बाहर आया। उस दत्ता ने देखा कि एक महात्मा जा रहा है, उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा कि जीवा एक महात्मा जा रहा है, तेरी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। अब जीवा कहने लगा, भाई रहने दे, क्यों जख्म को हरा कर रहा है, क्या करेगा बुला करके? ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को देख लिया, उनके पास कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने फिर कहा, भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाऊं। जीवा ने कहा, भी देख ले फिर, मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं, बुला ले। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर खोज रहे हो। और दत्ता क्योंकि पुण्यात्मा थी, चरणों में मत्था टेका, हे महाराज आपके दास की झोपड़ी है, चरण रखना, आ जाओ यहां। दर्शन देना, कुछ समय विश्राम करो। परमात्मा ने कहा अच्छा भाई चलो, जाके जैसा भी कोई स्थान था बैठने के लिए दे दिया, कोई पीड़ा मुड़ा, परमात्मा बैठ गए। और कहता है दत्ता कहाँ जी, वो लाना साधु के चरण धोवाएंगे, अपनी लाए कोई परात थाली और उसमें पानी डालकर चरण धोए। अब जीवा कहता कि दत्ता ले जाए इस जल को चरणामृत को, और संतों के चरणामृत को गली में नहीं डाला करते, इसको अंदर डाल देना पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता गया आंगन में और जो ही वो लगा डालने जल, डालते डालते ही वो सूखी टहनी जो गलने लगी थी नीचे से वो एकदम हरी भरी होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब दत्ता ने कहा जीवा आइए एक बार जल्दी आना। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे, ये तो मालिक आगे, भगवान आगे, देखी एकदम हरी भरी होगी टहनी, वट वर्क्स यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ दिया, अर्नु देखे मुंह की तरफ और रोए और कहने लगे भगवान हम तो कति थक चुके थे और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज नहीं, ये भगवान आप पहले क्यों ना आए दाता, हमने बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे बेटा मैं आत जाता पहले भी, तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से, यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी भी हो जाती होनी थी तो वैसे ये संत की पहचान नहीं होती, फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके लीला करनी पड़ी। बेटा यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती तुम उपदेश ले लेते, ठीक है, फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोलबाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो, तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते। और उस समय जब गुरु बना लिया उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता है। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करे, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करे, और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता है। अपना आत्मा ये परम संत के ऊपर लागू है ये सारे नियम, और हमने ला रखे नकलियां के ऊपर, लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तदत ना लावेवार, झूठा गुरु हो तो तुरंत त्याग दे, और सही गुरु मिलने के बाद फिर मन में आपके कोई दोष रहता है फिर आप नाम रहित हो जाते हो। तो बेटा मैं पहले आ जाता तुम फिर भी धक्के खाते, मैं इसलिए देर से आया हूं कि तुम्हारी सारी फड़क निकल ले और तुम इन सारे संतों ने टटोल लो पहले, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती। तो दोनों कहने लगे महाराज जी यह बात आपकी 100 की 100 सच्ची, 100%, क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी और उनका बोलबाला, हमने कति परख कर देख लिया उनके पास ये शक्ति नहीं थी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा केवल यही एक उदाहरण नहीं होना चाहिए, एक संत की पहचान इस सब एक पॉइंट से नहीं होती, संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब सुनो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता। परमात्मा ने उनको कई दिन तक अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो सुखी टहनी लगाई थी कबीर परमेश्वर जी के चरणामृत से वह हरी भरी होगी थी, उस टहनी ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरा मंगलेश्वर गांव भी वहां से खत्म हो गया, इधर उधर जाकर बस गए, क्योंकि वो एक टापू सा है और उस टापू को नर्मदा नदी ने अपना चारों तरफ से घेर रखा है। वहां नर्मदा नदी, नर्मदा दरिया दो भागों में बंटकर आगे जाकर फिर एक होकर समुद्र में गिर जाती है। तो वहां टापू बना रखा था, वो टापू था वो मंगलेश्वर गांव। तो अब वहां कोई नहीं रहा, वहां जब टापू में वो बदल गया तो बाहर आके रहने लगे, वहां अकेला वो वटवृक्ष रह गया। उस वटवृक्ष के विषय में बताया है कि लगभग 900 एकड़ में कह घूम गया, फैल गया। लगभग 600 वर्ष पुराना वो वटवृक्ष आज भी विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। वो लगभग 1.5-2-3 एकड़ में अब भी है और वहां कबीर पंथ का एक महंत पद से ये परंपरागत वहां एक आश्रम है उस वटवृक्ष के नीचे ही। और वो केवल महंत पदवी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें जो अद्भुत लीलाएं घटनाएं घटी हुई हैं ये सुरक्षित रहें, इस बिचली पीढ़ी तक के कबीर परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवशेष बकाया हैं। तो पुण्यात्मा उस वटवृक्ष को देखने के लिए हम गए बांधवगढ़। बांधवगढ़ के अंदर कुछ नहीं पाया, वहां उनका धर्मदास जी का लड़का था नारायण दास, वो परमात्मा की शरण में नहीं आया था। फिर परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को अपनी कृपा से, 60 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी धर्मदास जी की, तब एक संतान एक पुत्र दिया था। उस पुत्र से उसका वंश चला था और उस पुत्र के साथ बड़ा बेटा हमेशा विरोध रखता था, उसके साथ जो है ना झगड़ा रखता था। उसने वहां से छोड़ दिया था बांधवगढ़, दूसरे छोटे लड़के ने, कहीं और चला गया था, कुदरमाल वगैरह नाम बताया एमपी में। तो बांधवगढ़ में वो हमारे साथ था, वो हमारा सेवक, उसने बाद में बताई दास को फिर ये बातें। तो उसने जाकर के बांधवगढ़ में जो महात्मा से दिखे थे उनसे बात करी, अलग से चर्चा की, ज्ञान गुण की बातचीत की। फिर हम वहां से चल पड़े वटवृक्ष देखने। हम वटवृक्ष पर पहुंचे तो वहां एक महंत था, अच्छी गद्दी लगा रखी, एक झूला के ऊपर बैठा वो और एक दो उसका सेवक उसको झुला रहा था। तो उससे उसने एकांत में बात करी, हम कहीं उधर उधर अपने बैठे थे, उससे पूछा जी सार नाम क्या है, सत नाम क्या है। वो कहने लग गया मुझे तो मालूम नहीं, मेरे मामा जी रहा करता यहाँ पर महंत, उसकी मृत्यु होगी, मेरी तो लकड़ी की दुकान थी, मुझे यहाँ बैठा दिया, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है। हाँ इतना अवश्य है कि ये वटवृक्ष के विषय में जानता था, बाकी सार नाम के बारे में मुझे नहीं मालूम। ऐसे हुआ बांधवगढ़ में उन संतों से पूछा, उनने भी यही जवाब दिया, कोई कुछ बतावे कोई कुछ बतावे, ये मंत्र है ये मंत्र है। फिर हम पहुंच गए और कई स्थानों पर गए, बड़े बड़े जो कबीर पंथ के थे, तो सब जगह घूम के हम वापस आ गए। वहां चल बच्चे देख लेंगे, परमात्मा के स्थान है, अच्छी बात है। फिर आकर के उसने बताया, कहने लगा जी ये यात्रा मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। मैं कहा भाई ऐसी क्या बात है बताइए, कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं, उसने अपनी सारी गलती मान ली, कि मैंने ये सोचा था कि कबीर तो परमात्मा है ही है, कबीर जी तो इसमें कोई सकरा है को नहीं, सारे प्रमाण आपने दिखा दिए। तो मेरा नो शक था कि जब कबीर जी भगवान है तो इनके पूरे मेथड से कबीर पंथ के जो साधु संत हैं वो तो गर्क पावेंगे, कति सैचुरेट पावेंगे, वो तो परिपूर्ण होंगे। मैं बोला फिर भाई क्या देखा? मैं बोला बेटा अगर वो परिपूर्ण होते तो दास ने डले डोंड की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी संघर्ष करने की? इस दास ने क्या जरूरत थी फिर इस पंगे में पा देने की, सबको मैं बताऊं इनका ज्ञान गलत, इनका ज्ञान गलत और यह ज्ञान सच्चा। और सभी बोली आत्मा भी नो सोचे रामपाल निंदा करता है, नंदक को और सच्ची बताऊं। तो उसने फिर बताया जी मैं ऐसे ऐसे किसी से पूछा भी महाराज जी सार नाम क्या है। उसने क्या बताया कि हाथ पर आटा ले लो, एक कबीरपंथी पुराने आश्रम का 60-70 साल का बूढ़ा, और नो कह हाथ में आटा ले लो और श्वास के निकट कर लो, और श्वास से उस आटे में कोई डिस्टर्बेंस ना होनी चाहिए, बस ये समझ लो सार शब्द है। वो कहने लगे अब मेरा तीसा पेटा भर गया, ऐसी दृढ़ता आई हे भगवान, कहीं तक कति नरे खाखी बैठे हैं, किसी के पास भी कुछ कोनी। और फिर उसने बताई जी मेरे मन में इतना नालायक हूं, मेरे मन में ये दोष आ गया था, मैं भाई कोई बात नहीं यो तो आवेगा और इसका समाधान भी भगवान करेंगे, जिन पुण्यात्माओं पर रहम करेंगे। वो दिन है आज उस बच्चे को ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ इस दास के इस सारे ज्ञान पे, और फिर उसका जीवन सफल हुआ, ना तो फिर मार खा जाता कि तो। तो पुण्यात्माओं अब बोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक और परिवार था राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में, पूरा परिवार आया यहाँ पर दीक्षा ले ली क्रोताश्रम में और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया सारा ज्ञान समझकर कि भाई दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं, कोई सिर फेरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा, कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा उनको झाड़ा लान का वरदान दे रखा है, कनपेट झाड़न का कबीर साहब ने तेनू बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा, सतनाम तो वंश से नहीं नाद से होगा, यानी आज तक किसी ने देख लो नाद वाले जितने यानी वचन के से उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है, और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जचगी, अकरामपाल तक 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया, यहां से छोड़कर वहां चले गए धक्के खान। अब वहां जाकर पूछा, उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था, सारनाम तो बालक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खेच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उन्हें जाकर पूछा जी हमने नाम दे दो, दामा खेड़ा पहुंच गया। वो बोले भाई ठीक है बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताल्य सब सिंधु नाम यही अंश का काम। वो देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए, उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहां कबीर चौरा है काशी में, वहां परम संत पाओगे, वहां धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहां से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, इस काल ने तो कई सिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खख नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी हैं। कई करोड़ लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीरपंथी, लेकिन हैं वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, ना उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी संत कहते हैं, पारखी पंथ। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान उनका बहुत कुछ ठीक है। परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं, और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते हैं, लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपने आत्माओं जैसे किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है, और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या, उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं, तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहब के ज्ञान से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए, और यहाँ का काल भगवान है, इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित खान का श्राप लगा हुआ है, तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं, कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं, और वहां वही राधा स्वामी वालों वाली छुरी के वहां प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन वो ये मानते हैं कि वहां आत्मा उस प्रकाश में घूमती रहती है। परमात्मा पहले गुप्त था, फिर प्रकाश बन गया, प्रकाश उत्पन्न कर दिया उसने अपनी दौनी से, फिर उसमें समा गया। कुछ ऐसे भी बकवास करते हैं बेतुकी, उसमें समा गया प्रकाश में, वो प्रकाश चेतन हो गया, प्रकाश का टट्टू चेतन होता बता, प्रकाश तो प्रकाश ही है। और फिर कुछ एक तो यहां तक अपनी मन ग्रंथ कहानी बना रहे हैं कि उसने प्रकाश को, परमात्मा ने फिर प्रकाश को ऐसे उछाड़ा, जब परमात्मा प्रकाश में मिल गया, उछाड़ा किसने, फिर वह बूंद ऊपर जैसे पानी को ऊपर उछाल दे वापस जल में मिल जाती है, तो जल में मिली नहीं, वह बूंद नारी नारी रहेगी, सारी आत्मा बन गई वह, और फिर प्रकाश में घूमन लागी, जैसे इसका मतलब जैसे मछली घूमया करे समुद्र में, नो धक्के खावे, तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है, और वो चेतन प्रकाश है, एक की छुरी है, बाकियों की तो वहां है, वो निराकार है भगवान, और वहां आत्मा अलग रहती है उस प्रकाश में, जैसे मछली जल में घूमती रहती है, ऐसे धक्के खाती रहती है, ऐसे भटकती है, तो ये टट्टू मोक्ष हुआ कोई बात हुई है, तो इस तरह की छुरी। चलो ये जो कबीर पंथी हैं, ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है, इनकी बात कुछ ठीक सी है, लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया, और आशा लगाए बैठे आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़गी। ये तो दशा है कबीर साहब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की, और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिय नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है, बताओ जीव ही भगवान है, और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ, बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है, और जीव ही भगवान है ये तो इनका ज्ञान है, और विचार सुन हो जाना, ये इनका ध्यान है। इन ते कोई पूछन वाला हो भले पुरुषो, जब जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने की, ये पुस्तक छापने की क्या आवश्यकता रहेगी? दो अक्षर की बात है, भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता, बताए इनको संत कहते आने भी शर्मावा उन्हें। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहां इस पार्क सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान है। अब इनकी क्या छुरी है ये बताता हूं आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? इन आदि शंकराचार्य जी ने 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी को क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुनकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था। उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहां जा बैठे। जब वो निकला उससे प्रार्थना की, ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस बोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहां से हिंदू धर्म का ये उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर अपने गुरुजी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना के रह गया, वहां पर भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना के रह गया फिर? अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी, यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा तो आज कोई राम नाम लेने या नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीरपंथी कवावे, कबीरपंथी कवावे, और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ तो ये काल का पक्का दूत है। अपने आत्मा ये क्या बताते हैं कि ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई कर्ता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई कर्ता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे, पहले इनकी सारी थ्योरी बताता है दास। और ये पारखी जो संत हैं, ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। और इनका ये भी मानना है जैसे कोई प्रश्न करता है क्या परमात्मा भक्तों पर दया करता है, दुष्टों को हानि करता है, वो कहता है कि जो भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। अब इसके विषय में आपको दिखाते हैं, ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं। जो चातुर प्राणी है, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद है ठोठ, ये संतों के निकाम की इनके देगल जोठ। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जनसमूह बैठा है, कमाल कर दिया ये भगवान, कितनी श्रद्धालु कितने ड्यूटी हैं, आंख मीच कर बैठे हैं, गुरुजी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता है उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, और ये कौन सी है, पद छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सी, ये इसका अनुवाद करता है, इसका यो नाम लिख रखे है। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवद गीता और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की जो जानकारी दे दी, अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो दो प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये सातवां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य परवर्ती और निवर्ती इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है, वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब आठवें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के आठवां, वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। नौवें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी, उग्र कर्मणा, उग्र कर्मणा माने नकम में ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये, अपनात्मा इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी कहलाता है, वैसे तो इसको कबीर पंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करे। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है, इसे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफी यहां आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने सैकड़ों पुस्तक बना रखी है और एक गीता सार भी बना रखा है, वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सिलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल कर हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है।